जय ओम विष्णुवाद ब्रह्मराज काचार स्वान गिरी शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुवाद तुलाभृष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमचार श्री हरदास ठाकुर की जय। भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद त्रयोदशी की जय। निताय गौर हरि परमानंद। इज राघव हियर कहा अंधेरी से आता है कि कहां से आता है? सो देयर विल बी इंग्लिश ट्रांसलेशन इन बैक साइड देयर वेयर गंधराज प्रभु इज सिटिंग। So all the English speaking devotee can go there. And aap log aage thoda aa jao. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज का दिन बड़ा ही पुनीत दिन है कि आज के दिन इस धराधाम पर भगवान श्री बलराम जी नित्यानंद के रूप में आविर्भूत हुए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि ऑलमोस्ट 10-15 साल के बाद में नित्यानंद प्रभु के विषय में आज मैं बोलने जा रहा हूं। आप लोग समझते अच्छा है इसलिए ताली बजाया। मेरा दुर्भाग्य नहीं है क्योंकि हर एक साल जीबीसी मीटिंग में रहने के चलते अवसर नहीं मिलता था बोलने के लिए। सुनने का अवसर मिलता था लेकिन इस साल कुछ काम के चलते मैं 2 दिन लेट जाऊंगा। इसलिए आज नित्यानंद प्रभु के विषय में वो अभी भीमा प्रभु को आज क्लास देना था तो कल शाम को चक्रवर्ती प्रभु ने कहा कि आपको क्लास देना है। तो जो कुछ भी यहां पर है उससे चेतन भागवत से चेतन चरतामृत चेतन मंगल से इन लीलाओं में से एक लीला मैं सोच रहा था। वह लीला है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के मिलन का लीला। उनका प्रथम मुलाकात कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब का वर्णन किया जाएगा। तो क्लास से पहले हरादास प्रभु कहे कि प्रभु जी आज फास्टिंग है, मतलब प्रसाद नहीं है, तो लंबा समय चल सकता है। तैयार हो आप लोग ना? तो इस कथा को हम 3 भागों में लेंगे। एक नित्यानंद तत्व के विषय में कुछ वार्ता करेंगे, उसके बाद उनके जन्म संबंधी परिचय से कुछ वार्ता करेंगे और अंत में इस लीला का हम वर्णन करेंगे जो कि मैंने आप लोगों से कहा, जहां पर भगवान चेतन महाप्रभु और नवदीपे नित्यानंद चंद्र आगमान, यहां जई सुने तार मिले प्रेमधान। नवदीप में जिस प्रकार से गौरचंद्र और नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ, नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ और गौरचंद्र के साथ में उनका मिलन हुआ, जो भक्त इस कथा को सुनता है उन्हें नित्यानंद प्रभु और गौरचंद्र का प्रेम धन प्राप्त होता है। तो गौर प्रेम, नित्यानंद प्रेम की प्राप्ति का यह कथानक है। तो बोर्ड पर कुछ प्यार लिखे हुए हैं, तो हम उसका पुनरावृत्ति करेंगे, तदुपरांत कथा प्रारंभ करेंगे। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, एक स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्यकाय बेहु कृष्ण लीला रसहाय। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, एक स्वरूप देह दोहे भिन्न मात्र काय, एक स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय बेह कृष्ण लीला रसहाय। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, एक स्वरूप देही भिन्न मात्र काय, आद्य काय विहु कृष्ण लीला रसहाय। మాతాజీలో మాతాజీలో सर्व अवतारी सभी अवतारों के उद्गम कृष्णा भगवान कृष्ण स्वयं स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम तहार उनका द्वितीय दूसरा देह शरीर का विस्तार श्री बलराम जी हैं। अनुवाद तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं, आदि पुरुष हैं, ईश्वर के मूल स्वरूप हैं और उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम हैं। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वे स्वांश कहलाते हैं और जिनकी शक्ति सीमित होती है वे विभिन्नांश कहलाते हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार काय व्यूह हैं और कृष्ण की दिव्य लीला में सहायक होते हैं। तात्पर्य बलराम श्री कृष्ण के स्वांश विस्तार हैं, अतएव कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्भुज में प्रधान विग्रह हैं और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में अग्रगण्य सहायक हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम चक्रवर्ती साउंड लिटिल अप। तो भगवान गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं ब्रजनंदन श्याम सुंदर के रूप में, और जो प्रथम चतुर्व्यूह है उनमें बलराम वासुदेव बलराम जी हैं, बलराम जी से प्रथम चतुर्भुज जो है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है। उनमें जो संकर्षण है वो भगवान के बलराम जी के अंश हैं और उन्हीं संकर्षण से विष्णु की उत्पत्ति होती है और वही विष्णु इस सृष्टि में गर्भोदकशायी विष्णु, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में कार्य करते हैं। वही संकर्षण इस पृथ्वी को अनंत शेष के रूप में धारण करते हैं और वही संकर्षण भगवान की शैया बनते हैं। तो इस प्रकार से पांच रूप से बलराम जी इस संसार में भगवान का सेवा करते हैं और आध्यात्मिक संसार में संकर्षण देव के रूप में वे विद्यमान रहते हैं और वहां भी भगवान के लीला में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसको लाकर के देते हैं। तो यहां पर इन दो प्यारों में बतलाया गया है कि कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। यदि कोई भेद है तो केवल रंग का भेद है। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं जहां की बलराम जी गौर वर्ण के हैं, नहीं तो दोनों एक ही हैं। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सेई कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। सेई कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, वही भगवान श्री कृष्ण नवदीप में अवतरित हुए हैं गौरचंद्र के रूप में और वही बलराम जी भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो आए हुए हैं वे हैं श्री नित्यानंद के रूप में आए हुए हैं। एक बार प्रभुपाद जी ने किसी भक्त से पूछा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो भक्त ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। प्रभुपाद ने कहा वो कृष्ण के अवतार नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं और बलराम जी साक्षात नित्यानंद प्रभु हैं, साक्षात वही हैं। तो इसका मतलब वहां पर नहीं है, नहीं वहां पर भी हैं। ये है स्पिरिचुअल फॉर्मूला, दो और दो दो होता है और दो में से दो निकालो तो भी दो होता है। यहां पर हम एक साथ में दो जगह नहीं रह सकते हैं लेकिन भगवान रह सकते हैं। यहां पर हमारी शक्तियां जो है दो जगह रह सकती है, आदेश के रूप में लेटर लिख देंगे तो लेटर के रूप में किसी को दे दिया लेटर के, हाँ स्टोर कीपर 4 किलो चावल दे देना, प्रेसिडेंट साहब लेटर लिखती है तो शक्ति है तो दे देगा, वो नहीं है तो भी, लेकिन भगवान में ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं भगवान में कमी है, भगवान की पूर्णता है। संकर्षकारोतसाही गर्भोदसाही चयोपयोदसाही शेषाश कलाश नित्या नंदाख्य राम शरणम ममास्तु। वही श्रीनित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अनुसंकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बात पहले बता दिया था कि पांच रूप में वे यहां पर आते हैं। कारुणोदक साई विष्णु के रूप में, गर्भोदक साई विष्णु के रूप में, क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में, शेषनाग के रूप में और भगवान के सैया क्षीर सागर में भगवान जब शयन करते हैं उस रूप में। इन लोगों का काम क्या है इसका मैं विशद वर्णन पहले कथाओं में कह चुका हूं बलराम पूर्णिमा के अवसर पर, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं। कारुणोदक साई विष्णु सृष्टि के जो तत्व हैं, इसे स्वर्ग कहा जाता है, उसका उत्पत्ति करते हैं। ये 24 तत्व हैं, इन 24 तत्वों का वे उत्पत्ति करते हैं और ये 24 तत्व फ्रोजन अवस्था में रहते हैं, बर्फ के समान रहते हैं, तो ये प्रधान कहलाते हैं। और जब भगवान ब्रह्मा जी को दे देते हैं तो उस समय भगवान दृष्टिपात करते हैं, काल प्रचोदयात, समय के द्वारा दृष्टिपात करते हैं तो मिल्ड होता है, तो वो कहलाता है महतत्व, और तब उसे ब्रह्मा जी लेकर के सृष्टि करते हैं। जीव का भी रचना उन्हीं तत्वों में से एक है जो कि कारुणोदक साई विष्णु करते हैं। उनके रोम रोम से इस प्रकार के विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और उसमें भगवान पुनः शयन करते हैं, वे कहलाते हैं गर्भोदक साई विष्णु। गर्भोदक साई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और उनके सांस प्रश्वास से भी सृष्टि होती है और उसमें भगवान जो निवास करते हैं वे कहलाते हैं क्षीरोदक साई विष्णु। क्षीरोदक साई विष्णु के दो काम है, एक जो है वह है सृष्टि का पालन करना और दूसरा काम है सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहना। तो गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु और कारुणोदक साई विष्णु का भेद जो है बताया गया है कि कारण समुद्र में जब भगवान शेषशय्या पर शयन करते हैं, अकेले रहते हैं और उनके सांस प्रश्वास से विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, तो वे कहलाते हैं कारुणोदक साई विष्णु। और जब भगवान उसी प्रकार से शयन करते हैं लेकिन लक्ष्मी जी उनके पैर के पास पाद संवाहन करती हुई दिखाई पड़ती है और उनके नाभि से कमल नाभ निकला हुआ है, कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ है, तो वे कहलाते हैं गर्भोदक साई विष्णु। और क्षीरोदक साई विष्णु खड़ा रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं और शेष नाग हमेशा उनके पीछे रहते हैं। ईशो परिषद का जो पुराना किताब था उसमें उनका था फोटो, क्योंकि काम करना पड़ता है, अन्य जगहों पर ज्यादा काम नहीं करना है, यहां पर क्षीरोदक साई काम करना पड़ता है, सृष्टि का पालन करना, पालन करने में काम करना पड़ता है, जीव के साथ में रहना, तो वहां पर खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से इस तीन रूप में और पृथ्वी का धारण किए हुए भगवान अनंत शेष के रूप में और भगवान की सैया के रूप में रहते हैं क्षीर सागर में, जो भगवान शयन करते हैं तो कारण सागर में भी, गर्भ सागर में और क्षीर सागर में, तीनों जगह पर भगवान यहां पर रहते हैं, संकर्षण देव तीनों जगह पर रहते हैं लेकिन शेष के रूप में रहते हैं, ठीक है, सर्प के रूप में रहते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरि करें कृष्ण रसेवान, तो मूल संकर्षण जो हैं या जो चतुर्व्यूह में जो मूल संकर्षण हैं वो बलराम जी हैं। ऐसे में संकर्षण से ही विष्णु आते हैं और विष्णु ही इस धराधाम पर पांच रूप में उनका सेवा करते हैं। पंच रूप धरी करें कृष्ण सेवन, पांच रूप में कृष्ण का सेवा करते हैं, इसका वर्णन यहां पर किया जा चुका है पहले। कौन कौन पांच रूप है? सज्जा, क्षत्रिय, दूसरा कोई बताओ, अंदाज लगाओ या अंदाजे लगा रहे हो तो? अरे जो सुने वो बताओ। अभी मैं वर्णन किया पांच रूप से, हाँ। इतना बोलो मैं सुन सकूं। प्रहार नहीं खाए हो, फास्टिंग अभी बहुत देर है, जोर से बोलो। कारण साई विष्णु के रूप में शुरू करते हैं, जो कारण है सब चीज के। दूसरा है गर्भोदक साई विष्णु के रूप में और तीसरा है छेरो साई विष्णु के रूप में, ठीक है। तीनों काम भी बता दिया क्या क्या है और दो और जो है, एक तो है सैया के रूप में और दूसरा पृथ्वी को धारण करते हैं अनंत शिष के रूप में। तो पांच रूप में, पंच रूप धरी करे करें कृष्ण सेवन, पांच रूप से वे कृष्ण का सेवा करते हैं। अपन करे न कृष्ण लीला रसहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय। वे स्वयं भगवान कृष्ण के लीला में सहायता करते हैं और चार अन्य रूप में सृजन कार्य भी वे करते रहते हैं। सृष्टि आदि सेवा तार आज्ञा रो पालन, शेष रूपी करे कृष्णेन विविध सेवन। तो इस प्रकार से ये बलराम जी जो पांच रूप में भगवान का सेवा करते हैं, तो उसमें से जो चार रूप है वह सृष्टि के कार्य में लग जाता है। यानी जो चार रूप सृष्टि का है वह है कारणोदक शाही, गर्भोदक शाही और क्षीरोदक शाही, ये तीन हो गया। और चौथा है पृथ्वी को धारण करना यानी अनंत शेष। लेकिन एक रूप से जो शेष रूप है, उस रूप से शेष के दो अर्थ होते हैं, अनंत शेष या बचा हुआ जो रूप है, चार तो हो गया पांचवा जो रूप है उससे क्या करते हैं। शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवान, विभिन्न प्रकार का सेवा करते हैं। जैसे कभी कभी वे भगवान का निवास स्थली बन जाते हैं, भगवान का सैयासन बन जाते हैं, कृष्णा कभी कभी आसन बनते हैं, कभी कभी पादुका बनते हैं भगवान का, वस्त्र बनते हैं, उपधान बनते हैं, छत्र बनते हैं, इत्यादि विभिन्न रूपों से भगवान का वे सेवा करते हैं। सर्वरूपे अश्वादये कृष्ण सेवानं, से बलराम गौर संगे नित्यानंद। आनंद की प्राप्ति होती है सेवा करने से, सेवा लेने से आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, सेवा करने से आनंद की प्राप्ति होती है। हम लोगों का स्वरूप है कि हम लोग सेवक हैं और जब सेवक सेवा करेगा तो उसे आनंद की प्राप्ति होगी। दुख की बात है कि हम लोग सेवक बनकर के, सेवक होकर के मालिक होने का प्रयास करते हैं और जो लोग मालिक हैं उन्हें कितना टेंशन है जाकर उन मालिकों से पूछो। लेकिन जो सेवक है खा करके निश्चिंत भाव से रात को सो सकता है, ये मालिक लोगों को नींद भी नहीं आती है। ये आर्टिफिशियल है मालिक बनना, सेवक बनना नेचुरल है। برداشت نہیں کرنا چاہیے. میں ادھارن دیا کرتا ہوں کہ مالک بننا کھانے کے سمان ہے, رائٹ ہردا, اور سیوک بننا کھلانے کے سمان ہے, ہے نا. اب دیکھو پریشانی کس کی ہوتی ہے, کھانے والوں کو کھلانے والے کو, کھانے والوں کی پریشانی ہوتی ہے نا. کھانے والا کا پیٹ بھر گیا یہاں تک, کھلانے والا ایک روٹی اور تھوڑا لے لیجیے, ایک تھوڑا سبزی اور لے لیجیے, کھانے والا مر رہا ہے کہ بھائی اب زیادہ مت پیٹ پھٹ جائے گا, کھلانے والوں کو آنند آ رہا ہے. تو سیوا کرنے میں آنند آتا ہے, سیوا لینے میں آنند نہیں آتا ہے. اسی لیے بلرام جی بڑا سیف سائڈ چنے ہیں اور وہ ہے سیوا کرنے کا. تو آج بلرام جی سے پرارتھنا کرنی چاہیے کہ وہ آنند کو وہ بانٹے تو ہیں ہی لیکن ہم لوگ لے نہیں پا رہے ہیں. تو ان سے آج پرارتھنا کرنی چاہیے کہ ہے نتیانند پربھو تھوڑا ہم پر کرپا کریں کہ ہم بھی اس سیوا آنند کا بھاگی بن پڑے. یہاں پر کہتے ہیں سیوا آنند, سیوا میں آنند, جو آنند ہے جو مزہ ہے سیوا کرنے میں, وہ سیوا لینے میں نہیں. آج سنسار میں سیوا کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, سیوا لینے والوں کی کمی ہے. میں کہوں گا سیوا کرانے والوں کی کمی ہے, سیوا لینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. سیوا لینے والا کرشن ہیں بیٹھے ہوئے, سیوا کرانے والوں کی کمی ہے. تو سیوا کرانا, سیوا لینا اور سیوا کرنا, تین بات ہو گیا. تو کبھی کبھی جو سیوا کرانے والے ہوتے, جیسے ہم لوگ ہیں مینیجر لوگ ہیں, تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم بھی سیوا لینے والے ہیں, تکلیف ہوتا ہے. ہمارا کام ہے سیوا کرانا, لوگوں کو انسپائر کرنا, لوگوں کے لیے ادارن پرستت کرنا. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, سیوا کرنا سب چاہتے ہیں لیکن انہیں انسپریشن چاہیے. اور انسپریشن کہاں سے آتا ہے, جب ہم سوئم سیوا کریں گے. ید ید آچرتی سرشتا تت تت ایو اترتو جنہ. جب سیوا کرانے والا آگے رہے گا تو سیوا کرنے والے بنا کہے پیچھے دوڑیں گے. یدی سیوا کرانے والا آگے نہیں رہے گا تو ڈنڈا مارتے رہو تو بھی سیوا کرنے والا بہانہ ڈھونڈ لے گا. تو یہ ضروری ہے کہ سیوا کرانے والے کو آنند یدی لینا ہے تو اس کو آگے رہنا چاہیے سبھی کاموں, چاہے منگلا آرتی ہو, چاہے کلاس ہو, چاہے گرو پوجا ہو, چاہے سندھیا آرتی ہو, چاہے کر سیوا کرنا ہو, کچھ بھی کرنا ہو تو آگے رہنا چاہیے. تو یہاں تین پرستھتیاں ہیں, سیوا لینے والا, سیوا کرانے والا اور سیوا کرنے والا. تو ہم سب لوگ سیوا کرنے والے ہیں, ہم لوگ سیوا کرنے والے ہیں. پربھوپاد جی سیوا کرانے والے ہیں, انہوں نے کرایا, ان کے جو ریپرزینٹیٹو لوگ ہیں, جی بی سی اتیادی پرسیڈنٹ لوگ, یہ سیوا کرانے والے ہیں. تو سیوا کرنے والوں کو چاہیے کہ سیوا کرانے والوں کا سہجوگ کرے, اور سیوا کرانے والوں کو چاہیے کہ ہم ادارن پرستت کریں تاکہ سیوا کرنے والے انسپائر ہوں, اور تب سب لوگوں کو آنند ملے گا. اور آنند کہاں سے آئے گا, بلرام جی سے آئے گا, نتیانند پربھو سے آئے گا. ٹھیک ہے, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, نتیانند پربھو, لیکن انتر نہیں ہے دونوں میں. سرو روپے آسوادائے کرشن سیوا آنند, سی بلرام گورو سنگے نتیانند. وہی نتیانند پربھو ہیں جو سیوانند کے سری مورتی ہیں, پرتروپ ہیں. تو سیوا کا آنند لینا ہے تو بھگوان نتیانند پربھو سے پرارتھنا کرنا چاہیے. سپتم شلوکر ارتھ کری چاری شلوکے جاتے نندیانند تتو جانے سرو لوکے. تو اس کے پہلے سات شلوکوں کا ویاکھیا چار شلوکوں میں کی گئی ہے. اب ان شلوکوں میں سارا سنسار نتیانند پربھو کے وشے میں ستیہ کو جان سکتا ہے. ان شلوکوں کے سنگ तो प्रथम अध्याय में ही नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन चार श्लोकों में किया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहां पर श्रीमती राधिका का गुणानुवाद करने के बाद नित्यानंद प्रभु का गुणानुवाद करते हैं। संकर्षणाकार तयोदशाही गर्भोदशाई चपयोदिशाई शेषाख्य यस्यांश कला सनित्या नंदाख्य राम शरणम ममास्तु। तो अब तक से एक इस श्लोक का यहां पर वर्णन किया गया। इसी प्रकार से चार श्लोक है। मायातिते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वर श्री चतुर्विहुय मध्य रूपम तस्यद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्धे मायाभर्ता जाडंड संघाश्रयांग सेते साक्षात्कारोंभि मध्ये यस्यैकांश श्री पुमानादिदेव तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्धे यस्यांश शिलगर्भोदशाही अन्नाब्जब्जलोक संघातनाल लोक सस्तु श्रुतिका धाम धासु तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्धे। तो इन चारों श्लोकों का मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में वर्णन कर दिया। इसका विस्तार से आगे किया गया है तो आप लोग इसको सुनेंगे। तो नित्यानंद तत्व को मैं बताया कि नित्यानंद प्रभु हैं कौन, और जैसा कि बताया था कि नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के संबंध में कथा होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव का तिथि या कार्य। भगवान बलराम भगवान कृष्ण के आगमन से पहले आते हैं। उनका काम है व्यवस्था करना। भगवान का जो स्वरूप है वह है सच्चिदानंद रूप। भगवान की जो तीन शक्तियां हैं जैसे संबित शक्ति, संहित शक्ति और आह्लादनी शक्ति, इन तीन शक्तियों में से जो संबित शक्ति हैं वे हैं नित्यानंद प्रभु, वे हैं बलराम जी। संबित का मतलब होता है वित्त, मतलब धन संपत्ति, और संबित मतलब धन संपत्ति को जुटाना। भगवान के लीला में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनका व्यवस्था करना किसका काम है? बलराम जी का है। यानी भगवान का एडवांस पार्टी कौन है? बलराम जी। भगवान का पदयात्रा वगैरह होता है ना, एडवांस पार्टी जाता है, तो भगवान के एडवांस पार्टी हैं बलराम जी। वही बलराम जी भागवतम के दशम स्कंद में हम सुनते हैं कि भगवान बलराम जी पहले आए थे। और उनका काम क्या था बलराम जी का आकर के? मायादेवी भी आई थी, भगवान सब पहले आए थे। भगवान अनुज हैं, ये लोग अग्रज हैं। तो बलराम जी आए थे देवकी के घर में पहले। देवकी घर में आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि देवकी घर में पहले षडगर्भ था, छह असुर लोग थे। तो असुर लोग सब जगह गंदा करते रहते हैं और भगवान वहां पर आने वाले हैं तो उसका सफाई करने के लिए आए थे बलराम जी। तो सफाई करने के बाद में काम खत्म हो गया तो रोहिणी जी के पास माया देवी उनको लेकर के प्रस्थापित कर दी। तो बलराम जी का काम है कि भगवान के लीला में सहायता करना, सब व्यवस्था करना। तो उसी प्रकार से भगवान गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव से पहले आए थे श्री बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में। राड़ देश एक प्रधान देश है और वहां पर दशरथ जी के अवतार, वसुदेव जी के अंश एक ब्राह्मण परिवार में हड़ाई पंडित नाम के ब्राह्मण के रूप में दशरथ जी अवतरित हुए थे। तो राड़ देश के एक चक्र नाम के एक गांव में हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी के यहां भगवान श्री नित्यानंद प्रभु आए हुए थे। 1395 ईस्वी सन में नित्यानंद प्रभु आए थे। माघ शुक्ल त्रयोदशी का तिथि था। नित्यानंद प्रभु कई एक भाई थे, उन भाइयों में से सबसे बड़े थे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु अपने माता पिता के बड़े ही प्रिय थे। क्यों भाई सो क्यों रहे हो, भूख से सो रहे हो कि? सो मत, मैं तुम्हें भी सो जाऊंगा। हरे कृष्णा 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 मैं धीरे धीरे बोलता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि आप इतना जोर से बोलते हैं कान में लगता है, और धीरे बोलता हूं सो रहे हो। मैं जगा सकता हूं जोर से बोल करके, लेकिन सोचता हूं धीरे धीरे बोलो। तो नित्यानंद प्रभु अपने माता पिता जी के बड़े ही प्रिय थे। उनके पिताजी उनके बिना एक सेकेंड भी नहीं रह सकते थे। चैतन्य भागवत में इसका विशद वर्णन किया गया है कि उनके पिताजी किस प्रकार से भोजन भी करते थे तो नित्यानंद को साथ में बैठाकर भोजन करते थे। कहीं जाना होता था तो नित्यानंद को अपने साथ ले जाते थे। यहां तक कि बाजार में सब्जी इत्यादि लाने ले जाना होता था तो नित्यानंद को साथ लेकर जाते थे। नित्यानंद प्रभु को पढ़ाई लिखाई के लिए ये भेजने जाते थे, छोड़ने के लिए। आजकल बाप मां बच्चों को गाड़ी में छोड़ने जाते हैं, वो छोड़ने जाते थे पढ़ाई के समय, वो भी वहां बैठकर पढ़ते रहते, सुनते रहते थे, घर काम ही नहीं करते, बस नित्यानंद देखते रहते थे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने माता पिता के बड़े चहेते थे, माता पिता को बड़े प्यार कर रहे थे और माता पिता उन्हें प्यार कर रहे थे। बड़ा ही सुंदर परिवार का वातावरण था, सब भाइयों में बड़ा स्नेह था। नित्यानंद जो माता पिता से प्यार मिलता था वही प्यार अपने भाई बहनों को भाइयों को देते थे, और इस प्रकार से बड़ा ही संपन्न प्रसन्नचित आनंदमय परिवार था। तो नित्यानंद प्रभु अब सोचे कि ये आसक्ति और बढ़ती जा रही है जो कि उचित नहीं है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु और भगवान चेतन महाप्रभु इस धराधाम पर आए थे जीवों का कल्याण करने के लिए। तो अपने माता पिता के आसक्ति बढ़ते हुए आसक्ति से थोड़ा चिंतित रहने लगे। तो उन्होंने एक दिन निर्णय किया, 12 साल की अवस्था हो गई थी, नित्यानंद प्रभु बचपन से ही शास्त्रों का अध्ययन करते थे, स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी लोक रीति के अनुसार वे शास्त्रों का अध्ययन करते थे और सभी शास्त्रों में वे पारंगत हो गए थे। भागवत इत्यादि तो उनका कंठस्थ हो गया था, सभी शास्त्र वेद पुराण आदि में पारंगत हो गए थे। जब घर से निकलने का समय आया तो वे सोचे कि अब मैं निकलूं से निकलूं कैसे, जन कल्याण के लिए बहुत लोग निकले, जैसे हमारे गुरु जी श्री प्रभुपाद जी घर गृहस्थी को छोड़कर के इधर टी और मी कहकर निकल गए। भगवान के विभिन्न अवतार जैसे भगवान कपिल देव अपने माता देवहूति को शिक्षा दे करके और वहां से निकले। भगवान नित्यानंद प्रभु सोचे कि यदि आज के दिन मैं निकलूंगा, भगवान चतुर्मा वो स्वयं निकले, घर में कोई नहीं था, तो हम समझ सकते हैं प्रचार का आज कितना इंपॉर्टेंट है। प्रचार के लिए नित्यानंद प्रभु, जो किसी चीज की कमी नहीं थी, वो खाने पीने के लिए साधु नहीं बने, चेला बनाने के लिए साधु नहीं बने, नेम फेम ग्लोरी के साधु नहीं बने, जन कल्याण के लिए घर से निकलना चाहते थे। लेकिन बाप मां और परिवार का जो स्नेह पास जो था, उनको बांधते जा रहा, टाइट करते जा रहा था। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये उचित समय नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसा व्यवस्था किया, जब वे 12 साल के थे तो एक शंकरानंद नाम के सन्यासी भ्रमण करते हुए रादेश पहुंचे, एक चक्रग्राम पहुंचे। प्रथम बार ही जब शंकरानंद भगवान श्री नित्यानंद प्रभु का दर्शन किए तो उनके शरीर में रोमांच कंप अश्रु सब आ गए और वो समझ गए कि ये हमारे प्रभु हैं। भगवान नित्यानंद प्रभु उनको आह्वान किए थे, उनको बुलाए थे, तो मानव ग्रंथ कह रहे हैं प्रभु मैं आ गया हूं, बताइए हमारा सेवा क्या है, मैं क्या करूं, मुझे आपने क्यों बुलाया है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु उनका अगवानी किए और अपने मन स्थिति को उनको समझा दिए, बतला दिए कि क्या करना है। तो शंकरानंद जी का बड़ा देखभाल हुआ, वहां पर सेवा शुश्रूषा हुआ। कुछ दिन वे रहे वहीं पर और जब जाने लगे तो उन्होंने एक इच्छा प्रकट की उनके पिताजी से। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि भारत में जितने भी तीर्थ स्थली है उन तीर्थ स्थलियों का मैं दर्शन करूं, लेकिन मैं अकेला हूं, मुझे एक सहयोगी चाहिए। तीर्थस्थली में अकेला नहीं जाना चाहिए, माया बड़ी बलवती है, हमेशा कोई ना कोई संग रहना चाहिए, संग में जाना चाहिए। पहले हम लोग जाते थे, पहले अकेला नहीं जाते थे, कहीं वृंदावन जाना हुआ, मायापुर जाना हुआ, तो अभी भी याद है 15-20-25 भक्त लोग ट्रेन में बुकिंग कराते थे और हलवा पूरी बनवाते थे, याद है, हलवा पूरी और सब्जी और पुस्तक होता था और करताल मृदंग। तो ट्रेन में अन्य जिन लोगों का रिजर्वेशन था, कृष्णराज प्रभु याद है ना, उन लोगों को आफत बन जाता था भक्तों के चलते, क्योंकि हम लोग खूब कीर्तन करते थे ट्रेन में कीर्तन करते थे, पुस्तक वितरण करते थे, प्रचार करते थे और प्रसाद खाते थे और प्रसाद खिलाते थे उन लोगों को भी। तो सब लोग पूरा वातावरण पूरा भोगी कृष्ण भावनामय हो जाता था, यहां तक टीसी विचार आकर बढ़ जाता था, टिकट भी नहीं पूछता था कि टिकट लिए हो कि नहीं, ये था संघ का रंग। अभी आजकल हम अकेले जाते हैं, अकेले जाने में क्या तकलीफ होगा, बड़ी परेशानी होगी, नाक बजाने वाले रात को आपको सुनने नहीं देंगे, उसके बाद विभिन्न प्रकार का सांसारिक बात करते रहेंगे, कान में वही जाएगा। जब हमारी जनसंख्या ज्यादा रहेगी तो हम किस किस से बात करेंगे तो वो सुनेंगे, उनकी जनसंख्या ज्यादा है तो जो वो कहेंगे हम सुनेंगे। अब आप सुनो समझो कि भक्ति के लिए सहायक है क्या, विषयों का संग करना और विषयों का बात सुनना। इसीलिए संग में रहना चाहिए, हमारे यहां एक बस हुआ करता था, प्रभुपाद पैलेस बस। हम भक्तों को ट्रेन टिकट किसी को अकेला नहीं देते थे कि तुम, कोई उस समय आता था एक आदमी कि हमको जाना है प्रभु जी, नहीं, टेम्पल कमांडर लिस्ट बनाएगा कि कौन कौन जा सकता है और लिस्ट पर साइन होगी। और भक्त को पैसा योग्य भी नहीं है, टेम्पल कमांडर का हेडक था, उसका लीडर कौन होगा, जाकर टिकट कटाएगा और साथ में जाएंगे। और नहीं तो बस था प्रभुपाद पैलेस बस में, सब चढ़ो यहां से वृंदावन जाएंगे, बीच में खड़ा करके नररी याद है ना, नररी फिर तुम्हारा फोटो मेरे पास है, पतला वाला लाल कपड़ा वाला, जाकर खेत में सो जाते थे, तालाब में नहाते थे, प्रसाद बनाते थे, खाते थे, क्या आनंद था वो आनंद कब आएगा भाई, फिर लाना चाहिए उस आनंद को, साथ में चलने का, साथ में रहने का आनंद ही अलग है। यानी मुझे याद आ गया, तो सकनानंद जी जब भाई पंडित से कहे कि मैं विभिन्न तीर्थों का दर्शन करना चाहता हूं, तीर्थाटन के लिए जाता हूं, लेकिन मैं अकेला हूं, मुझे एक गोपाल, तू किस तीर्थ में पहुंच गए हो, एनीवे नए भक्त लोग बेचारे बड़े परिश्रम करते हैं, मैं जानता हूं, कम सोना होता है, ज्यादा सेवा करना होता है, निंदा आती है। तो वे कहे कि मैं एक चाहता हूं साथ में, और आप अपने इस बेटे को, नित्यानंद प्रभु ही खड़े थे, अपने इस बेटे को हमारे साथ भेज दीजिए, मैं इसका खूब देखभाल करूंगा, चिंता मत करो, खाने पीने का चिंता मत करो, खूब खिलाऊंगा पिलाऊंगा, और जब तीर्थ यात्रा हो जाएगी तो मैं आपको ला करके यथावत सुपुर्द कर दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने हड़ाई पंडित से, अब हड़ाई पंडित के नित्यानंद प्रभु प्राण थे, अब हड़ाई पंडित कैसे, अब बड़ा दुविधा पड़ गए, एक तरफ ये सन्यासी मांग रहे हैं, इनको ना भी नहीं कर सकते हैं और दे भी नहीं सकते हैं। तब उन्हें याद आया कि किस प्रकार से विश्वामित्र जी अपने प्राण धन राम और लक्ष्मण को, सॉरी दशरथ जी विश्वामित्र जी को अपने प्राण धन राम और लक्ष्मण को दिए, और यही तो लक्ष्मण हैं, नित्यानंद प्रभु और कौन है, लक्ष्मण हैं, और हराई पंडित और कोई नहीं दशरथ जी हैं, तो उनसे मांगने के लिए आए हुए हैं, अब ना कैसे कहें, अपनी पत्नी से सलाह पूछे, तो उनकी पत्नी भी सती पत्नी थी, अब अतिथि कोई घर पर आए और कुछ मांगे और ना कहना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, तो उनकी पत्नी भी नित्यानंद प्रभु की माताजी भी सहमति दे दी। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु गृह त्याग किए। 8 साल तक नित्यानंद प्रभु भारत में जितने तीर्थ स्थलियां हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, जितने भी तीर्थ स्थलियां हैं, सभी तीर्थ स्थलियों का वे दर्शन करते 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 ब्रज में आए। तब तक से उनकी जीवन की अवधि 20 साल की हो गई थी, 12 साल में घर छोड़े थे, 8 साल तक परिभ्रमण किए, निम्बारका समझ रहे हो ना, 8 साल लगा था। वृंदावन आए, वहां पर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से मिले, माधवेंद्रपुरी वे आचार्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम कृष्ण प्रेम को बतलाया, कृष्ण प्रेम क्या होता है, लेकिन वे कृष्ण प्रेम का स्वादन करते थे, और वही कृष्ण प्रेम ईश्वरपुरी के माध्यम से भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ, और वही कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु अपने क्लोज एसोसिएट के साथ में आस्वादित करते थे, और उसी कृष्ण प्रेम को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूपादि सर्ग गोस्वामियों को दिया।
और वही रूप गोस्वामी उसी कृष्ण प्रेम को हम सब लोगों को बांटा, इसीलिए हम लोग रूपानुग वैष्णव कहलाते हैं। रूपानुग वैष्णव कहलाते हैं क्योंकि रूप गोस्वामी ने वह कृष्ण प्रेम दिया था। तो माधवेंद्रपुरी के पास वो प्रेम था। प्रेम की परिपाटी ऐसी है जिसमें प्रेम अंकुरित हो जाता है, न तो वह खाता है, न पीता है, न सोता है, न उसे खाने का भार रहता है, न पीने का, कुछ भी नहीं। माधवेंद्रपुरी की कथा आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से स्वयं भगवान आकर के उनको खिलाते थे, मधुकरी नहीं करते माधवेंद्रपुरी। तो उन माधवेंद्रपुरी से नित्यानंद प्रभु ब्रज में मिले, और जब माधवेंद्रपुरी पास से मिले, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, तो नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम है, लेकिन गुरु का काम है हृदय प्रकाशित, कृष्ण भक्ति को प्रकाशित करते हैं गुरु। तो नित्यानंद प्रभु की पुनर्स्मृति वापिस आ गई। ब्रज में थे, ये वही ब्रज है, ये वही बलराम है, लेकिन समय दूर कर दिया है। ये कलयुग में आए हैं, द्वापर में आए थे। जैसे कभी कभी बहुत दिन के बाद हम लोग अपने गांव जाएं, या किसी दूर स्थली पर जहां पर पहले बचपन में खेले थे वहां पर जाएं, और पहले जो घर था वो सब तोड़ ताड़ करके सब पक्का घर सब जगह बना दिया गया है, जो लोग जीवित थे वो मर गए हैं, या जो जवान थे वो बुढ़े हो गए हैं, हैं। तो था जगह तो वही है लेकिन सब कुछ अलग सा लगता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु उस रूप में नहीं देखे, वो सब कुछ यथावत देखे, सब कुछ यथावत देखे। और बार बार वे ब्रज में लौटने लगे। जब उन्हें पूर्व स्मृति उनके मन में उदय हुआ तो कृष्ण प्रेम में उन्मत होकर के वे हुंकार करने लगे, गर्जन तर्जन करने लगे, और पूरे प्रेम हुंकार के चलते जितने वृक्ष लताएं पताएं वो मानो सब के सब ट्रांसफॉर्म हो गए, एक द्वापर युग आ गया। ठीक वैसे ही जैसे महाराज इंद्रदुम्न जब ब्रह्मलोक से आए तो देखिए कोई नहीं था, न उनकी पत्नी गुंडजा जी थी, न तो उनका सेनापति, न विद्यापति, कोई नहीं था, लेकिन सब वही थे। और जब ब्रह्मा जी अपने कमंडलों के जल छिड़काव किए तो सब लोग अपने रूप में आ गए। तो सब लोग वृंदावन में ही थे, लेकिन जब माधवेंद्रपुरी का स्पर्श प्राप्त किया नित्यानंद प्रभु तो उन्हें सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इसलिए वे बड़े जोर जोर से हुंकार करने लगे और कृष्ण को पुकारने लगे कि मेरे प्राण कन्हाई, भाई कन्हाई, तुम कहां हो, तुम कहां छिपे हो। विरह कातर करते हुए उधर नित्यानंद प्रभु दौड़ रहे हैं। उसी समय इधर गौरमंडल में भगवान चैतन्य महाप्रभु भी गया से, ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त कर करके आए थे, और समय आ गया था कि कृष्ण प्रेम के वितरण का। इन्हें भी आभास हो गया था, जितने लोग थे चैतन्य लीला में सब लोग छद्म रूप में थे, लेकिन प्रकाशित सर्वप्रथम प्रकाश जो किए से वे रोने लगे, इतने विरह कातर हो गए नित्यानंद प्रभु कि पत्थर भी पिघल जा रहे थे। लताएं पताएं मानो सब मायूस हो गए थे भगवान नित्यानंद प्रभु के इस हुंकार को सुनकर के, कृष्ण के पुकार को सुनकर के। और इधर चैतन्य महाप्रभु गौरमंडल भूमि में भक्तों के साथ में शिवास आंगन में हरि कीर्तन करते थे, लेकिन वे भी विरह कातर होकर के और लगे पुकारने, भैया बलराम, भैया सुदाम, श्रीदाम तुम लोग कहां हो, कहां हो। इस प्रकार से गौरचंद्र भी हुंकार करने लगे और होश हवास खोकर के गौरचंद्र दौड़ पड़ते थे नित्यानंद प्रभु को ढूंढने के लिए, बलराम को ढूंढने के लिए। और इधर वैसे ही नित्यानंद प्रभु पूरे 84 कोस ब्रज में दौड़ दौड़ कर सर्वत्र पुकार रहे थे, बार बार यही कह रहे थे कि भाई कन्हाई, मेरे प्राण धन कन्हाई तुम कहां हो, श्रीधाम तुम कहां हो। भगवान कृष्ण और बलराम जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए थे तो भगवान के एक प्रिय सखा सुदामा कृष्ण को ढूंढते ढूंढते गिरिराज जी के तलहटी में गए और उन्हें ऐसे दिखाई पड़ा कि कृष्ण इस कंदरा में प्रवेश कर रहा है और वे भी इस कंदरा में प्रवेश किए। और कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जब कृष्ण नहीं मिले तो वहां वे बैठ करके ध्यान मग्न होकर के कृष्ण को, कृष्ण पर ध्यान करने लगे। कृष्ण है कहां, कृष्ण द्वारिका चले गए थे, लेकिन जब कृष्ण इस तरह धाम को छोड़कर चले गए तब श्रीराम विह्वल होकर के और कृष्ण के ध्यान में मग्न होकर के वहां बैठे। वे श्रीराम पत्थर बन गए थे गिराज के तलहटी में, लेकिन जब श्रीपाद नित्यानंद प्रभु हुंकार कर रहे थे, पुकार रहे थे कि भाई कन्हाई कहां हो, सुबल कहां हो, श्रीधाम कहां हो, सुदामा कहां हो, जब इस प्रकार से पुकार रहे थे तो जो श्रीधाम पत्थर हो गए थे, ध्यान मग्न थे, उनके कानों में ये आवाज आई कि मुझे कोई पुकार रहा है, मुझे कोई पुकार रहा है। नित्यानंद प्रभु बड़े उच्च स्वर से पुकारते थे और गिरिराज जी के पत्थरों से जब टकरा करके वो आवाज जाती थी, श्रीराम के कानों में जब मधुर ध्वनि पड़ रही थी तो उनके शरीर में संचार आ गया और वे चीर परिचित बलराम जी का ध्वनि वे सुने। ये भी व्यग्र हो गए, बलराम जी का ध्वनि जब उनके करों में पड़ा तो व्यग्र होकर के गिरिराज के निर्जन वन में वे बलराम जी को ढूंढने लगे। ये कलयुग है, हैं? यहां पर ढूंढ रहे हैं। बाद में दोनों का सुमिलन हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। दोनों पहचान भी रहे हैं और पहचान नहीं भी रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीधाम जब बलराम के मुख से जब आवाज सुने श्रीधाम श्रीधाम, तुम्हें तो पहचान गए कि बलराम जी का ही आवाज है, इसलिए बाहर आए। अब जब सामने आए बलराम जी के सामने, नित्यानंद के सामने, तो नित्यानंद वो पहचान गए, लेकिन ये है कौन, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो श्रीराम ने कहा
हे भाई तुम कौन हो, तुम मेरा नाम लेकर बार बार मुझे क्यों परिचित पुकार रहे हो। तुम्हारे पुकार के चलते मेरी चीर निद्रा भग्न हो गई। तुम्हारा जो आवाज है लगता है चीर काल से परिचित आवाज है, इसको मैं जानता हूं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूं। तब भगवान नित्यानंद प्रभु के आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और वे पहचान गए अपने श्रीराम को। इस प्रकार से पहचान करके भगवान नित्यानंद प्रभु अपना परिचय दिए श्रीराम को। श्रीराम गदगद हो गए और श्रीराम ने कहा, श्रीराम कहें कोताय सिंगा धारा चूड़ा नागराली छड़ाइया अया छे नारा मुड़ा श्वेत गौर लुकाई रे अरुण गौर के ने दादा बलराम बोली ना लगाय मने देखी तबे तो रहस्ते तार ताली दिया जमुना पर्यंत आमी जाब पलाइया। इस प्रकार से सिद्धांत सोचने लगे कि क्या हो रहा है, ये सही में बलराम है? अब इतना बलराम से नित्यानंद सुन गए, ठीक है ये तुम सही में मेरे दाऊ जी हो, बलराम हो, दादा बलराम बोली ना लगाए मौन। कहते कि हमको नहीं लगता तुम बलराम हो, हमको नहीं लगता तुम बलराम हो, ये तुम मेरे बलराम हो तो तुम ये पकड़ो। और श्रीराम चले वहां से भाग जमुना तरफ। श्रीराम भागे और भगवान नित्यानंद प्रभु खेल खेल में उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और श्रीराम का एक कालर जो है पकड़ लिया। कहा बदमाश तू कहां भाग रहा है, तू कहां भाग रहा है? इस परीक्षा में नित्यानंद प्रभु उत्तीर्ण हो गए। जहां से 10 कदम गए होंगे और नित्यानंद प्रभु दौड़े और पकड़ लिए। इस प्रकार से दोनों मित्र एक दूसरे का आलिंगन किए, चुंबन करने लगे और प्रेम गदगद होकर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, श्री भाई भाई श्रीराम, क्या अभी भी तुम्हें कोई संदेश है कि मैं बलराम न हूं? अब इधर श्रीराम एक टक भगवान नित्यानंद की तरफ देख रहे हैं और नित्यानंद प्रभु बलराम की तरफ देख रहे हैं। देखिए नित्यानंद प्रभु 4 हाथ के थे और श्रीराम 7 हाथ के थे, क्योंकि द्वापर में लोग 7 हाथ के थे और कलयुग में लोग 4 हाथ के, आप नाप सकते हो अपना 4 हाथ से, 3 हाथ या 4 हाथ, 3.5। नित्यानंद प्रभु 4 हाथ के थे, नित्यानंद प्रभु 4 हाथ के थे, हम लोग 3.5 हाथ के हैं, लेकिन द्वापर में लोग 7 हाथ के होते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि भाई ये अभ्यास छुपा दो, ये 7 हाथ वाला रहेगा कोई पहचानेगा नहीं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने हिसाब किताब से उनको 4 हाथ का बना दिया और बाद में वही श्रीराम अभिराम ठाकुर के रूप में नित्यानंद प्रभु के पार्षद हुए। तब वो आपान और हाथे रहे 4 हाथ सुंदर और शरीर महापुरुष विख्यात से शुद्ध सख्य भाव है सर्वकाल अतएव नाम हैल श्री अभिराम गोपाल, तो उनका नाम हुआ अभिराम गोपाल। अब चार हाथ वाले वे भी हुए। वहां पर नित्यानंद प्रभु पूछ रहे हैं अभिराम से कि कन्हाई कहां है, कन्हाई कहां है, कृष्ण कहां है। तब श्रीराम प्रथम बार अपने प्राण कन्हाई के विषय में बताया कि हमारे प्राण कन्हाई आजकल नदिया में, नवदीप में गौरचंद्र के रूप में आए हुए हैं। अब सुनना था इतना नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु जानते थे लेकिन चाहते थे कि श्रीराम को अपने साथ लेकर जाना। अब इतना सुनना था कि नित्यानंद प्रभु प्रेम उन्मत होकर के मत हाथी के समान पृथ्वी पर झूमने लगे, झूमते झामते बड़े तेज गति से वे नवदीप के लिए प्रस्थान किए। वे प्रेम उन्माद में कभी रोते थे कभी हंसते थे, उनके कान के कुंडल हिलते रहते थे, उनके सिर पर पगड़ी बंधी हुई थी, पीताम्बर धारण किए थे, सॉरी नीलवर्ण का पगड़ी और नीलवर्ण का चादर और नीलवर्ण का परिधान धारण किए थे, बहुत सुंदर माला उर्दपुट तिलक किए हुए थे। नित्यानंद प्रभु अपना शुद्ध भूत खो करके नाचते हुए गाते हुए जा रहे थे। चले नीताय प्रेम भरे, गा सकते हो आप लोग? एनीवे, जब नित्यानंद प्रभु दौड़ते हुए जा रहे थे नाचते हुए गाते हुए, तो जितने ब्रजवासी थे वे जब नित्यानंद प्रभु को देखे तो वे लोग भी अपना काम धाम सब छोड़ करके और नित्यानंद प्रभु के पीछे दौड़ने लगे। अब कहां जा रहे हैं किसी को होश हवास नहीं है, सब लोग हरिण गायें सब जा रहे हैं और नित्यानंद प्रभु उन लोगों को देख करके बार बार कहते हैं कि हमारा कन्हाई आ गया है, हमारा कन्हाई आ गया है। जो ब्रज में कन्हाई था वही नवदीप में आया हुआ है गौरांग के रूप में, अपने पीत वर्ण में आया हुआ है, ऐसा मैंने सुना है। तो इस प्रकार से वे कहते हुए वहां से वे भाग रहे थे और सब लोग आ रहे थे। एक बलराम दास जी हैं, उन्होंने कहा है, अमारा चैनना भाई बाड़िए वे नदी आए, सदा नाची ताहे निपुर पाए, सुने छे न देर अवतार श्री गौरांग नामजार, अमिनीताय तार बड़ो भाई। इस प्रकार से वे नवदीप आए और नवदीप आकर सबसे पूछ रहे हैं कि हमारा कन्हाई कहां है, हमारा कृष्ण कहां है जो नदिया में आया हुआ है श्री गौरांग के रूप में, मैं उसका बड़ा भाई हूं, मेरा नाम निताई है, मैं उसका बड़ा भाई हूं। तो इस प्रकार से रास्ते में जाते हुए वे लोगों से पूछते थे और पुकारते थे, कहते ओ भाई बलरे नदेवासी निमाई पंडित कोना बाड़ी रे, प्राणेर भाई कानूरे आमी कोथा पाबरे, बलरे आमी प्रेमेर भाई देखे थी ऐसे चीरे। पूछ रहे हैं कि मैं अपने भाई को देखने आया हूं, बताओ किस घर में वो निवास कर रहा है, कहां पर है। पहले तो ब्रज में था, माखन चोरी करता था, लेकिन अब तो नदिया में आ गया है, अब मैं कैसे पहचानूंगा। ब्रज में तो उसे मैं कानू कानू कहता था, लेकिन अभी तो एक गौर तनु धारण किया है। ब्रजे नाम छिलो ब्रजेर कानू, एखन नदे ऐसे गौर तनु। मैं कैसे पहचानूंगा अपने गांव वाला, काला था यहां गोरा हो गया है, पहले माखन चोरी करता नहीं अभी क्या कर रहा है, मैं कैसे पहचानूंगा। भाई तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ। और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सब लोगों से पूछते हुए जाते 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 एक महाभागवत नवदीप में निवास करते थे मायापुर में, उनका नाम था नंदनाचार्य। तो नित्यानंद प्रभु ने निर्णय किया कि मैं अब इतना दूर से आया हूं भाई को खोते हुए, छोटा भाई है कोई बात नहीं, मेरा अगवानी नहीं किया, उसको तो मालूम है कि मैं आ रहा हूं है? तो मेरा अगवानी नहीं किया तो कम से कम मुझसे मिलने तो आएगा। तो इस प्रकार से भगवान नित्यानंद प्रभु नंदनाचार्य जो एक बहुत बड़े महाभागवत थे उनके घर पर वे निवास किए। चेतन भागवत में वर्णन किया गया है कि वे जब इतने बिह्वल थे, इतने कातर थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो वे डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु घर क्यों नहीं चले गए, या श्रीवास आंगन क्यों नहीं चले गए, अपने को छिपाए क्यों। तो इसके कई कारण है। एक कारण है कि नंदनाचार्य एक महान वैष्णव है। नंदनाचार्य को भगवान नित्यानंद प्रभु दर्शन देना चाहते थे, एक कारण। दूसरा कारण था कि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं। तो जब तक से कोई गुरु को नहीं जानेगा वो कृष्ण को नहीं जान सकता है, तो पहले नित्यानंद प्रभु को जानना जरूरी है, तब कोई चैतन्य महाप्रभु को जान सकता है। अब तक से चैतन्य महाप्रभु भगवान है कोई जानता नहीं था, अभी सब निमाई पंडित है। निमाई पंडित को लोग जानते थे, भगवान है नहीं जानते थे। अब लोग भगवान को जानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान है। ब्रजनंदन जी सची सुत हईल से बलराम हईल निताय, वही ब्रजनंदन श्याम सुंदर है, अब लोग जानेंगे। तो कृष्ण को जानने से पहले गुरु को जानना बहुत जरूरी है। तो कृष्ण को जानने से पहले नित्यानंद प्रभु को जानना जरूरी है, महाप्रभु को जानने से पहले, इसलिए अपने को छिपाए। और तीसरा कारण था कि बड़ा भाई हूं, छोटा भाई काम है अगवानी करना, मैं चला जाऊंगा तो उसको थोड़ा शर्म आ जाएगी, बल्कि वह आए मुझसे मिलने के लिए और साथ मुझको लेकर के चले। इन कारणों से नित्यानंद प्रभु ने निर्णय किया कि वे नंदनाचार्य के घर पर निवास करेंगे। अब नंदनाचार्य का परिस्थितियों का वर्णन व्यासदेव ने किया है कि नंदनाचार्य बेहोश हो गए नित्यानंद प्रभु देख करके। अरे भगवान तो एक ही है, ये दूसरा भगवान कैसे हो गया, ये दो भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान तो एक है। नित्यानंद प्रभु को देखकर वे निर्णय किए कि भगवान है, तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं भगवान तो एक ही है, भगवान दो कैसे हो सकते हैं। इसी उधार बुन में थे कि नहीं भगवान दो हैं, कृष्ण के साथ बलराम आए थे, राम के साथ लक्ष्मण आए थे, तो ये जो अवधूत सन्यासी लगता है ये और कोई नहीं है, ये स्वयं बलराम जी हैं। इस प्रकार से नंदनाचार्य सही कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये नंदनाचार्य है, सॉरी ये बलराम है। इधर सचिनंदन गौर हरि को भी मालूम हो गया कि बलराम जी अब पधार गए हैं, अब आ गए हैं। तो जब श्रीवास आंगन में कीर्तन हुआ उसके बाद महाप्रभु कथा कह रहे थे, सभी भक्त लोग वहां पर बैठे हुए थे, ध्यान से कथा सुन रहे थे। तो उस दिन महाप्रभु ने कथा नहीं कहा, कीर्तन के बाद कथा होती थी तो कथा नहीं कहे। उन्होंने क्या कहा, कहे अरे भाई दिन दुई तीनर अभितरे कोन महापुरुष एक आशीव एक एथारे। हे भाइयों, दो तीन दिन पहले कोई एक महापुरुष यहां पर आया हुआ है। तो मानो किसी ने कहा कि आपको कैसे मालूम है कोई महापुरुष आया हुआ है, यदि आया तो है कहां। तो महाप्रभु ने कहा कि भाई देखो, मैं रात में एक बहुत सुंदर स्वप्न दिया देखा और मैं उस स्वप्न को तुम लोगों के सामने बतला रहा। उन्होंने क्या स्वप्न देखा कि मैंने स्वप्न देखा कि एक अद्भुत सुंदर रूप ताल ध्वज दिव्य रथ मेरे द्वार पर आया, उस पर एक विराट काय पुरुष विराजमान थे, उनके कंधे पर मुसल था, उनके हाथ में कमंडलू, वे नीलांबर धारण किए हुए हैं, उनके कान में कुंडल है, यानी नित्यानंद प्रभु के सौंदर्य का वर्णन किए। कि मानो साक्षात बलराम जी हों और वह आकर के बार बार पूछ रहा है लोगों से, क्या यह निमाई पंडित का घर है, निमाई पंडित का घर कहां है, इस प्रकार से वो पूछ रहा है। और वह अद्भुत व्यक्ति कहा कि भाई मेरा तुम्हारा परिचय आज नहीं होगा, मैं तुम्हारा भाई हूं लेकिन कल मेरा तुमसे परिचय हो रहा। जब उसका बात मैं सुन रहा था मुझे बहुत आनंद आ रहा था, बड़ा हर्ष हुआ। और इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने स्वप्न के बात को लोगों से बताए और बड़े जोर जोर से हुंकार करने लगे, मैं लाओ मैं लाओ मैं लाओ, मदिरा लाओ मदिरा लाओ मदिरा लाओ, और इस प्रकार से पागल के समान वे नाचने लगे। सब लोग भय के साथ से कांपने लगे। श्रीवास पंडित महाप्रभु के सामने आए और हाथ जोड़ के वे प्रार्थना करने लगे कि जिस मदिरा को आप चाहते हैं वह तो आपके पास है, यानी कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम था लेकिन उसको प्रकाशित करना नित्यानंद प्रभु का काम था। कुछ देर बाद महाप्रभु आत्मसंवरण कर करके और बैठ गए और कहे कि जो महापुरुष नवदीप में पधारा आया हुआ है उसे ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को कहा कि आप लोग जाइए और उसे ढूंढ कर लाइए। ये दोनों लोग बिना खाए पिए तीन पहर तक ढूंढते रहे, तीन पहर तक ढूंढते रहे, थक गए बेचारे, ढूंढ नहीं पाए। फाइनली आकर के और महाप्रभु से हाथ जोड़ करके विनती किए कि महाप्रभु बिना खाए पिए तीन पहर तक, यानी तीन बजे तक एक तरह से हम ढूंढते रहे, लेकिन जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हो ऐसा तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई है ही नहीं नवदीप में, कोई ऐसा नहीं आया, पर पूरे नवदीप का छान लिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह गए लेकिन कोई ऐसा नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए ये बात सुन करके। भगवान जानते थे लेकिन फिर भी भगवान लीला किए इन लोगों को भेज कर। भगवान जानते कहां पर है, तो ये लीला किए इन लोगों को भेज करके। भगवान चैतन्य महाप्रभु लीलाधारी हैं, लीला करने के लिए जैसे ब्रज में लीला किए वैसे ही यहां पर वे लीला किए भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। कहा ठीक है आप लोग नहीं ढूंढ पाए और चलिए हम सब मिलकर चलते हैं। और सब लोग वहां से करताल मृदंग उठाए और कीर्तन करते हुए ढूंढने के लिए चले। जेठ का महीना, बेचारे हरिदास ठाकुर और श्रीनिवासचार्य श्रीवास पंडित ये लोग जेठ के दोपहरी में झूंढ रहे नित्यानंद प्रभु को। जेठ के समय नित्यानंद प्रभु आए हुए थे। जब शाम हो गया 3 बजे के बाद, जब थोड़ा धूप शांत हो जाता है, तब उस समय नित्यानंद प्रभु अपने अजान लंबित बाहों को उर्ध बाहों कहकर के नाचते हुए गाते हुए भक्तों के साथ में बलराम जी को ढूंढने के लिए निकले। और भक्तों के साथ में वे सीधे नंदनाचार्य के घर में महाप्रभु पहुंचे। उस दिन नंदनाचार्य का घर एक तीर्थ बन गया। नंदनाचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के निष्ठ पार्षद हैं। जब नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे, इधर नित्यानंद प्रभु चेतन महाप्रभु को देखे, चेतन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देखे, ये चीर परिचित दो भाई एक दूसरे को देख रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि जब अन्य भक्तों ने देखा नित्यानंद प्रभु के अजान उल्लंबित भुजा को, उनके सौंदर्य को, तो सब के सब भक्ति पूर्वक नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए। नित्यानंद प्रभु जब ही गौरचंद्र को देखे वे समझ गए कि ये मेरे हृदय के प्राणधन श्री कृष्ण हैं, ब्रज के कन्हाई प्राण कन्हाई कृष्ण हैं। और चेतन महाप्रभु का वे दर्शन किए, नख से लेकर के सिख तक पूरा दर्शन किए और लगे रोने, पहचान गए और पहचान करके रोने लगे। और इधर गौरचंद्र भी पहचान गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, पहचान रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। गौरचंद्र भी पहचान गए। तब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को इशारा किए, श्रीवास जी स्वयं नारद जी के अवतार हैं, कृष्ण के राधारानी के भी अंश हैं, तो उन्होंने इशारा किया और श्रीवास पंडित भागवतम से एक श्लोक पढ़े। यह वो श्लोक था जिस दिन भगवान गोचारण करने के लिए प्रथम दिन वन में गए थे और वन से जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे, तो जो श्लोक था। जब देखिए 6 साल के कृष्ण हो गए हैं, पौगंड अवस्था को प्राप्त किए हैं, गोपाष्टमी का दिन है, कृष्ण गोचारण करने के लिए गए हैं। और गोचारण करने के लिए पहले तो बछड़ा चराते थे और पहली बार गाय चराने गए, और उन्हें बहुत कौतूहल था, क्या क्या देखे नहीं कृष्ण वन में, अब आकर के मां को बताना, ब्रज गोपांगनाओं को बताना, ब्रज में बताना, कृष्ण के दिल में क्या कौतूहल था। और वन में जो कुछ प्राप्त हुआ था कृष्ण उसे ग्रहण कर लिए थे। आजकल भक्त लोग परिक्रमा में जाते हैं तो मोर पंख मिल रहा था खूब बिटोर लेते हैं, है ना, मोर पंख, तो ऐसे ही कृष्ण मोर पंख बिटोर लिए थे और कुछ बिटोर लिए थे, अब आ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं, बरहापीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनकपिशं वैजयन्ति च मालम् रन्ध्रान बेलधरसुधया पुरयान गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं पाविशद गी हुए आ रहे हैं। कर्णयो कर्णिकारम भगवान अपने कान पर कनेल का फूल लगाए हैं। कनेल का फूल जानते हो, दो प्रकार का कनेल, एक पीला होता है जिसको सिंह चढ़ाते हैं और एक ब्लू होता है, वो कृष्ण को बड़ा पसंद है, छोटा होता है। तो भगवान अपने कान पर कनेल का फूल लगाए हैं। बिभ्र दवास कनक विषम वैजयंत चमालम भगवान पीत वर्ण के धोती पहने हैं, वैजयंती चमालम और वैजयंती माला पहने हैं, वह माला जिसमें पांच प्रकार के फूलों का समावेश हो उस माला को वैजयंती माला कहते हैं। तो ये ग्वाल बाल लोग ये वैजयंती माला कृष्ण के लिए बनाए थे। निमार का सुन रहे हो ना, क्या बात कर रहा था है? क्या बात कर रहा था? सोएगा तो कहां सुनेगा। तू माला केवल रखते हो, माला बनाना सीखो। ये माला रखता है राधा रानी का माला। तो कृष्ण वैजयंती माला धारण किए हैं, यानी पांच प्रकार के फूलों से वैजयंती जमालाम रंध्रान बीणुधया रंध्रान बीणु धर सुधया अधर सुधया भगवान अपने बांसुरी को अपने अधरों से लगाए हुए हैं और ताल छेड़ रहे हैं बांस के बांसुरी के रंध्रों से। पुरैण गोप वृंदई ग्वाप बालों के साथ में ब्रज में प्रवेश करे वृंदारण्य स्पद पर वृंदारण्य से वृंदावन से अपने आते हुए भगवान प्रवेश कर रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु यह श्लोक सुने उन्हें वह दिन याद आ गया जिसने प्रथम दिन ब्रज में प्रवेश किए थे, वह याद आ गया। और भगवान अपने सखाओं के साथ थे, उसमें कृष्ण थे, बलराम थे, सुलामा सुदामा सब लोग थे और बृंदास्थली वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया था। जब यह श्लोक सुने तो भावावेश हो गए और प्रेम विह्वल होकर के नित्यानंद प्रभु पृथ्वी पर गिर पड़े। जब उन्हें वाह्य स्पर्श आया तो प्रभु ने श्रीवास पंडित के अंग का स्पर्श किया और कहा फिर इस श्लोक को आप बोलिए। तो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, बरहापीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक विषम वैजयन्ति च मालम रन्ध्रान वेणुधर सुधया पुरयन गोप वृंदै बृंदारण्य सपद रमणम पाविशद गीत कीर्ति। इतना जब पढ़े तो नित्यानंद प्रभु इतने आवेग में आ गए कि वो जंप करने लगे और पृथ्वी पर गिरने लगे। और जंप भी कई एक फीट ऊंचा जाते थे, दो महला तक बजाते थे और गिरते थे, मानो कोई गिर गया तो उसका हड्डी पसली गया, चूर जाएगा। सब लोग अकबक हो गए, सब लोग देख रहे हैं, उन्मत्त होकर के सिंहनाद करने लगे, गर्जन करने लगे, मानो पूरे आकाश में नित्यानंद प्रभु का ऐसा ध्वनि हुआ कि पूरा ध्वनि ध्वनित हो गया प्रेम में उन्मत्त होकर के। अब भक्त लोग अब देखे कि नित्यानंद प्रभु ऐसे गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट जाएगा उनका, तो भगवान से प्रार्थना है, हे कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो, ये तो अतिथि आया हुआ है, कहां से हाथ पैर टूट जाएगा, नाम बदनाम हो जाएगा। सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। है? इस प्रकार से भय से सब लोग विवल हो गए और भगवान नित्यानंद प्रभु एक बार पृथ्वी पर गिर करके अचेत हो गए। यह लीला बड़ी ही सुंदर है। भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण सोचे जे अनंत निरवधि धरे विश्वम्भर आज तार गर्व चूर्ण कोलेर भीतर। वृंदावन सागर कहते हैं कि जिस ब्रजन नंदन श्याम सुंदर का ये बलराम जी अहर्निश सेवा करते हैं, विभिन्न रूप से उनका सेवा करने में लगे रहते हैं, गौरचंद्र ने सोचा कि आज शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं श्रीपाद का मैं सेवा करूं, दाऊ जी का मैं सेवा करूं। छोटे भाई का ऐसे भी धर्म है कि बड़े भाई का सेवा करें। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के शरीर को अपने जांघे पर रख लिया, उनको सुलाया और अपने हाथों से भगवान नित्यानंद प्रभु के सुंदर शरीर का संवाहन करने लगे, मसाज देने लगे। सब ब्रजवासी जब गौर मंडल के भक्त लोग डरे हुए थे कि हाथ पैर टूट गया होगा, हड्डी निकल जाएगी ऐसे ऐसे, और महाप्रभु मानो ये बतला रहे हैं कि यदि तुम समझते हो तो मैं ठीक कर देता हूं, तो हाथ से थक गए होंगे तो उनका मैं मसाज देता हूं। इस प्रकार से भगवान नित्यानंद प्रभु के धूल धूसरित शरीर को भगवान चैतन्य महाप्रभु गोद पर लिए और उनके मुखचंद्र को एक टक देख रहे हैं। अब तक से तो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने अपना मन और प्राण दे ही दिया था, इस बार अपने शरीर को भी दे दिए। सब कुछ को चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। और इधर गौरचंद्र उन नित्यानंद प्रभु को लेकर के और उनका दर्शन कर रहे हैं। मानो ये दृश्य वैसे ही लग रहा था जब लक्ष्मण जी को रावण ने शक्ति रामावतार में जब शक्ति बाण लगा था लक्ष्मण जी को और वे निश्चिष्ट हो गए थे, तो किस प्रकार से भगवान श्रीराम लक्ष्मण जी को अपने गोद में लेकर के विलाप कर रहे थे। वे कह रहे थे कि भैया तुम जगो, तुम उठो, मैं अयोध्या में कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा, मैं जीते जी नहीं जा सकता हूं, मैं माता कौशल्या से कहां क्या कहूंगा। आते समय माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को कहा था कि लक्ष्मण मेरा प्राण है, तुम इसका ध्यान रखना, तुम नहीं उठोगे तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा। मैं माता सुमित्रा से क्या कहूंगा और उस बाबरी उर्मिला को क्या बताऊंगा। जैसे विलाप कर रहे थे भगवान, वैसे ही गौरचंद्र आज श्रीपाद नित्यानंद को अपने जंगे पर सुलाए हैं। मानो वही दृश्य है और यहां पर भाव विह्वल होकर के महाप्रभु रो रहे हैं और उनके आंखों से अश्रुधारा बह रहे हैं और उस अश्रुधारा से वे नित्यानंद प्रभु को सिंचित कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को स्नान करा रहे हैं। कुछ समय बाद जब नित्यानंद प्रभु को बाह्य स्थिति में आए, वे देखे गाहर पंडित इस भाव को समझ रहे थे कि महाप्रभु कितना आनंद हो रहा है और वे हंस रहे थे, तो महाप्रभु उनको तिरछे दृष्टि करके कहा कि भाई ऐसे मत करो कहूं को लज्जा न लग जाए। और नित्यानंद प्रभु देखे अपने को महाप्रभु के इसमें, तो उनको भी आनंद आ रहा था, उस पर भी हंसने लगे जावर पंडित। तो नित्यानंद प्रभु क्या कहने, ऐसे हंसो मत, अभी गड़बड़ हो जाएगा सब। तो इस प्रकार से लीला चल रहा था। अब नित्यानंद प्रभु का परिचय देना शुरू किए महाप्रभु। वे कहने लगे कि ये कौन है, डायरेक्टली नहीं कहे कि स्वयं बलराम है, तो तुम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे साधु सन्यासी का दर्शन हुआ जिसमें असात्विकी विकार देखने को मिलता है। अरे इनका चरण स्पर्श करो, इनसे आशीर्वाद लो, भक्ति मिलेगी। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का स्तुति करते हुए चेतन महाप्रभु भावाविष्ट हो गए। और उधर नित्यानंद प्रभु चेतन महाप्रभु को पकड़ लिए और सोचे कि बड़ा गलती हो गया, ये हमारे प्रभु हैं, मैं इनका सेवक हूं और इन्होंने अपने जंगे पर मुझे रखा था। अब ये क्षमा मांगने लगे और चेतन महाप्रभु का पैर पकड़ने लगे क्षमा याचना करने के लिए। और ये चेतन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का पैर पकड़ रहे हैं, सब गौरमंडल वासी हैं, नित्यानंद प्रभु चेतन महाप्रभु का पैर पकड़ रहे सब। त्रिनादपि सुनिचे न तरो रवि सहिष्णा अमान नामाना देना कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु यह दिखा रहे हैं, यह दिखा रहे हैं। जब यह लीला हो गया तब चैतन्य महाप्रभु हाथ जोड़ करके नित्यानंद प्रभु से पूछ रहे हैं कि हे श्रीपाद, आप नवद्वीप में आए, आपके आगमन का कारण क्या है, किस लिए, कहां से आप आए, नवद्वीप में कैसे आए। तो एक यहां बहुत सुंदर भजन है लेकिन मैं अब कैसे उसको गाऊं, समय नहीं है और गायन बजन भी नहीं है। नित्यानंद प्रभु बताए कि मैं अपने कन्हाई को खोज रहा हूं, मैं ब्रज में खोजा, वृंदावन में ढूंढा, मथुरा में ढूंढा, गिरार गोवर्धन के तलहटी में ढूंढा, नंदगांव बरसाने सब ढूंढा, तो पता चला कि मेरा ब्रजन नंदन श्याम सुंदर यहां पर नवद्वीप में आया हुआ है। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु के मन कामना को नित्यानंद प्रभु समझ गए। देखिए अब तक से चैतन्य महाप्रभु भगवान है कोई नहीं अंदर था, अब नित्यानंद प्रभु उनको प्रकाशित करने जा रहे हैं। समझ गए नित्यानंद प्रभु की अब समय आ गया है। तो मानो प्रभु महाप्रभु कहते क्या आप गुप्त लीला को प्रकट करोगे क्या, और इस प्रकार से महाप्रभु ने अनुमति भी दे दिया एक तरह से। तो नित्यानंद प्रभु, मैं उसी अपने कान्हा को ढूंढते हुए आया हूं लेकिन लगता है कि तुम ही हमारे वो कान्हा हो, तुम ही मेरे वो कृष्ण हो, लेकिन फिर भी मुझमें शंका हो रही है। महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु को शंका नहीं है, लेकिन अन्य जितने लोग हैं उन लोगों को बतलाने के लिए कि ये जो ब्रजनंदन जयी सची सुत हैल से, अरे यही ब्रजनंदन श्याम सुंदर ही है, अन्य लोगों को बतलाने के लिए उन्होंने कहा मुझमें शंका है। और भाई क्या तुम मेरे शंका को दूर कर सकते हो। नित्यानंद प्रभु साहब तोतली बोली बोलते थे, तो क्या कह रहे हैं, काका कनाए ना कि तुम मेरे, कहता रे तुम मेरे कन्हाई तो नहीं हो ना कि तुम मेरे कन्हाई तो नहीं हो, अमाय बोलो रे आमी चिने छी, मैं पहचान रहा हूं, मैं बलराम हूं, मैं पहचान रहा हूं, तुम मेरे कन्हाई हो, चिने छी चिने छी तोरे धबक करे ने रे बेणु रे दहाने ते भंग हो, करे क्या तुम कढ़ाई नहीं हो? बतला दो, मैं तुमको पहचान रहा हूं। अरे पहले तो तू त्रिभंग खड़ा होकर के हाथ में बेड़ी लेता था, बांसुरी लेता था। देखी रे कानू बीनू, देखी रे कानू बेनू बिना बेनू गौरा हाथे के मन साजे। अरे मैं तो तुमको देखा पहले कि तुम तो त्रिभंग ललित होकर के, कब है अभिषेक है? 11:30। ओ आई टू फिनिश द नाटक। आपने बोला कहते जाते, मैं कहते जा रहा हूं। चले आगे बढ़े है? अब परिचय करके फिर बाद में जल्दी मिलन करा दूंगा, ठीक है ना? अब परिचय करा रहा हूं। तो कहे पहले तो तुम त्रिभंग ललित था, हाथ में बाजू रह रहा था। देखी रे कानू बेनू गौर हाथे के मन साजे। और मैं देखना चाहता हूं तू गौर वर्ण का हो गया है, तुम्हारे हाथ में बांसुरी कैसा लगता है? पहले तो त्रिभंग ललित था, काला कलूटा था, अब थोड़ा गोरा हो गया शहर में आकर के, इधर नवदीप में आकर के, अब थोड़ा देखूं तो कैसे तुम्हारे हाथ में बेणु कैसी सजती है। बेरुण गानो अनेक दिनों सुनी नाय, बजाओ बेणु हिया जुड़ाई। अरे भाई बहुत दिन से मैं बेणु नाद नहीं सुना हूं, बांसुरी की आवाज नहीं सुना हूं, बजाओ बजाओ, थोड़ा मैं सुनना चाहता हूं। बजते बेणु बजाए छिले, देखिए खान बेणु की बोले बोले। अरे पहले तो ब्रज में तो बांसुरी बजाता था और सुन करके हृदय बड़ा सुस्थिर हो जाता था। बजाओ भाई बजाओ, बांसुरी बजाओ, मैं देखूं तो तुम कैसे बांसुरी बजाते हो, वो शीतलता प्रदान होती है कि नहीं। इस प्रकार से भगवान नित्यानंद प्रभु भावावेश होकर के बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु दोनों आंखों से नित्यानंद प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और उनके आंखों से अश्रु धारा बह रही है। पहले नित्यानंद प्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का, फिर नित्यानंद प्रभु का और महाप्रभु के। लज्जा के मारे कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं और एकदम खड़े हुए हैं, मानो ऐसा लग रहा हो कि अपराध कर दिए हैं। बाद में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श किए हाथ से, कहे भाई, फिर बोले, तुई काल रूपे कारे दिले काका कनाई तुम्हें नाई भाई गौरहरी। कन्हाई भाई, तुमने अपना श्याम रूप किसको दे दिया? कन्हाई तुम्हें नाई गौरव भाई, काल रूप कार्य दिले, तू काला रूप किसको दे दिया? अभी तू गौर रूप में हो गया, बताओ भाई। कादाए यशोदा माए सची माँ के मां बली लो। अरे तूने जसना मैया को छोड़ दिया, उनको तूने बहुत रुलाया। कादाए यशोदा माए, यशोदा मैया को तूने बहुत रुलाया। सची माँ के मां बली लो, और यहां आकर के तू सची माँ को मां बना लिया। कादाए वृंदावन नवदीपे उदय होली, तूने वृंदावन वासियों को बहुत रुलाया। जब भगवान ब्रज को छोड़कर जा रहे थे तो सब लोग रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे, तो ही बलराम जी याद दिला रहे हैं कि यशोदा मैया को खूब रुलाया ब्रज, और यहां आकर के सची को माता बना लिया। ब्रजवासियों